मत्ती की मार्फत इंजील बाब 27। सुबह सवेरे तमाम रहनुमा इमाम और कौम के तमाम बुजुर्ग इस फैसले तक पहुंच गए कि ईसा को सजाए मौत दी जाए। वो उसे बांधकर वहां से ले गए और रूमी गवर्नर पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यहूदा ने, जिसने उसे दुश्मन के हवाले कर दिया था, देखा कि उस पर सजाए मौत का फतवा दे दिया गया है, तो उसने पछता कर चांदी के 30 सिक्के रहनुमा इमामों और कौम के बुजुर्गों को वापस कर दिए। उसने कहा, मैंने गुनाह किया है क्योंकि एक बेकसूर आदमी को सजाए मौत दी गई है और मैं ही ने उसे आपके हवाले किया है। उन्होंने जवाब दिया, हमें क्या, ये तेरा मसला है। यहूदा चांदी के सिक्के बैतुल मुकद्दस में फेंक कर चला गया। फिर उसने जाकर फांसी ले ली। रहनुमा इमामों ने सिक्कों को जमा करके कहा, शरीयत ये पैसे बैतुल मुकद्दस के ख़जाने में डालने की इजाज़त नहीं देती क्योंकि ये खूनरेजी का मुआवजा है। आपस में मशवरा करने के बाद उन्होंने कुम्हार का खेत खरीदने का फैसला किया ताकि परदेसियों को दफनाने के लिए जगह हो, इसलिए ये खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। यूं यर्मिया नबी की ये पेशगोई पूरी हुई कि उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, यानी वो रकम जो इसराइलियों ने उसके लिए लगाई थी, इनसे उन्होंने कुम्हार का खेत खरीद लिया, बिल्कुल ऐसा जिस तरह रब ने मुझे हुक्म दिया था। इतने में ईसा को रूमी गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया। उसने उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? ईसा ने जवाब दिया, जी आप खुद कहते हैं। लेकिन जब रहनुमा इमाम और कौम के बुजुर्गों ने उस पर इल्ज़ाम लगाए तो ईसा खामोश रहा। चुनांचे पिलातुस ने दोबारा उससे सवाल किया, क्या तुम ये तमाम इल्ज़ामात नहीं सुन रहे जो तुम पर लगाए जा रहे हैं? लेकिन ईसा ने एक इल्ज़ाम का भी जवाब न दिया, इसलिए गवर्नर नहायत हैरान हुआ। उन दिनों ये रवाज था कि गवर्नर हर साल फसह की ईद पर एक कैदी को आज़ाद कर देता था। ये कैदी हुजूम से मुंतखब किया जाता था। उस वक्त जेल में एक बदनाम कैदी था, उसका नाम बरब्बा था। चुनांचे जब हुजूम जमा हुआ तो पिलातुस ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो, मैं बरब्बा को आज़ाद करूं या ईसा को जो मसीह कहलाता है? वो तो जानता था कि उन्होंने ईसा को सिर्फ हसद की बिना पर उसके हवाले किया है। जब पिलातुस यूं अदालत के तख्त पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे पैगाम भेजा, इस बेकसूर आदमी को हाथ न लगाएं क्योंकि मुझे पिछली रात इसके बायस ख्वाब में शदीद तकलीफ़ हुई है। लेकिन रहनुमा इमामों और कौम के बुजुर्गों ने हुजूम को उकसाया कि वो बरब्बा को मांगें और ईसा की मौत तलब करें। गवर्नर ने दोबारा पूछा, मैं इन दोनों में से किसको तुम्हारे लिए आज़ाद करूँ? वो चिल्लाए, बरब्बा को। पिलातुस ने पूछा, फिर मैं ईसा के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है? वो चीखे, उसे मसलूब करें। पिलातुस ने पूछा, क्यों, उसने क्या जुर्म किया है? लेकिन लोग मजीद शोर मचाकर चीखते रहे, उसे मसलूब करें। पिलातुस ने देखा कि वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहा बल्कि हंगामा बरपा हो रहा है, इसलिए उसने पानी लेकर हुजूम के सामने अपने हाथ धोए। उसने कहा, अगर इस आदमी को कत्ल किया जाए तो मैं बेकसूर हूँ, तुम ही इसके लिए जवाब दे ठहरो। तमाम लोगों ने जवाब दिया, हम और हमारी औलाद इसके खून के जवाब दे हैं। फिर उसने बरब्बा को आज़ाद करके उन्हें दे दिया, लेकिन ईसा को उसने कोड़े लगाने का हुक्म दिया, फिर उसे मसलूब करने के लिए फौजियों के हवाले कर दिया। गवर्नर के फौजी ईसा को महल बनाम प्रिटोरियम के सहन में ले गए और पूरी पलटन को उसके इर्द गिर्द इकट्ठा किया। उसके कपड़े उतार कर उन्होंने उसे अरगवानी रंग का लिबास पहनाया, फिर कांटेदार टहनियों का एक ताज बनाकर उसके सर पर रख दिया। उसके दहिने हाथ में छड़ी पकड़ाकर उन्होंने उसके सामने घुटने टेक कर उसका मजाक उड़ाया, ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब। वो उस पर थूकते रहे, छड़ी लेकर बार बार उसके सर को मारा, फिर उसका मजाक उड़ाने से थक कर उन्होंने अरगवानी लिबास उतार कर उसे दोबारा उसके अपने कपड़े पहनाए और उसे मसलूब करने के लिए ले गए। शहर से निकलते वक्त उन्होंने एक आदमी को देखा जो लीबिया के शहर कुरेन का रहने वाला था। उसका नाम शमौन था। उसे उन्होंने सलीब उठाकर ले जाने पर मजबूर किया। यूं चलते चलते वो एक मकाम तक पहुंच गए जिसका नाम गुलगुता यानी खोपड़ी का मकाम था। वहां उन्होंने उसे मै पेश की जिसमें कोई कड़वी चीज़ मिलाई गई थी, लेकिन चख कर ईसा ने उसे पीने से इनकार कर दिया। फिर फौजियों ने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े आपस में बांट लिए। ये फैसला करने के लिए कि किसको क्या मिले उन्होंने कुरा डाला। यूं वो वहां बैठकर उसकी पहरेदारी करते रहे। सलीब पर ईसा के सर के ऊपर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर यह इल्ज़ाम लिखा था, ये यहूदियों का बादशाह ईसा है। दो डाकुओं को भी ईसा के साथ मसलूब किया गया, एक को उसके दाहिने हाथ और दूसरे को उसके बाएं हाथ। जो वहां से गुजरे उन्होंने कुफ्र बककर उसकी तजलील की और सर हिला हिलाकर अपनी हकारत का इजहार किया। उन्होंने कहा, तूने तो कहा था कि मैं बैतुल मुकद्दस को ढाकर उसे 3 दिन के अंदर अंदर दोबारा तामीर कर दूंगा। अब अपने आप को बचा, अगर तू वाकई अल्लाह का फर्जंद है तो सलीब पर से उतरा। रहनुमा इमामों, शरीयत के उलमा और कौम के बुजुर्गों ने भी ईसा का मजाक उड़ाया। उसने औरों को बचाया लेकिन अपने आप को नहीं बचा सका। ये इसराइल का बादशाह है, अभी ये सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान ले आएंगे। इसने अल्लाह पर भरोसा रखा था, अब अल्लाह इसे बचाए अगर वो इसे चाहता है, क्योंकि उसने कहा मैं अल्लाह का फर्जंद हूँ। और जिन डाकुओं को उसके साथ मसलूब किया गया था उन्होंने भी उसे लानतान की। दोपहर 12 बजे पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। ये तारीकी 3 घंटों तक रही। फिर 3 बजे ईसा ऊंची आवाज से पुकार उठा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों तर्क कर दिया। ये सुनकर पास खड़े कुछ लोग कहने लगे, वो इलियास नबी को बुला रहा है। उनमें से एक ने फौरन दौड़कर एक स्पंज को मै के सिरके में डुबोया और उसे डंडे पर लगाकर ईसा को चुसाने की कोशिश की। दूसरों ने कहा, आओ हम देखें, शायद इलियास आकर उसे बचाए। लेकिन ईसा ने दोबारा बड़े जोर से चिल्लाकर दम छोड़ दिया। उसी वक्त बैतुल मुकद्दस के मुकद्दस तरीन कमरे के सामने लटका हुआ पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया। जलजला आया, चट्टाने फट गईं और कब्रें खुल गईं। कई मरहूम मुकद्दसीन के जिस्मों को जिंदा कर दिया गया। वो ईसा के जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर मुकद्दस शहर में दाखिल हुए और बहुतों को नजर आए। जब पास खड़े रूमी अफसर और ईसा के पहरेदारी करने वाले फौजियों ने जलजला और ये तमाम वाकयात देखे तो वो नहायत दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने कहा, ये वाकई अल्लाह का फर्जंद था। बहुत सी ख़वातीन भी वहाँ थीं जो कुछ फासले पर इसका मुशाहिदा कर रही थीं। वो गलील में ईसा के पीछे चलकर यहाँ तक उसकी खिदमत करती आई थीं। उनमें मरियम मगदलिनी, याकूब और यूसुफ की माँ मरियम और जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना की माँ भी थीं। जब शाम होने को थी तो अरमतिये का एक दौलतमंद आदमी बनाम यूसुफ आया। वो भी ईसा का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा की लाश मांगी और पिलातुस ने हुक्म दिया कि वो उसे दे दी जाए। यूसुफ ने लाश को लेकर उसे कतान के एक साफ कफन में लपेटा और अपनी जाती गैर इस्तेमाल शुदा कब्र में रख दिया जो चट्टान में तराशी गई थी। आखिर में उसने एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर कब्र का मुंह बंद कर दिया और चला गया। उस वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र के मुकाबले बैठी थीं। अगले दिन जो सबत का दिन था, रहनुमा इमाम और फरीसी पिलातुस के पास आए। जनाब, उन्होंने कहा, हमें याद आया कि जब वो धोखेबाज अभी जिंदा था तो उसने कहा था, 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा, इसलिए हुक्म दें कि कब्र को 3रे दिन तक महफूज रखा जाए, ऐसा न हो कि उसके शागिर्द आकर उसकी लाश को चुरा ले जाएं और लोगों को बताएं कि वो मुर्दा में से जी उठा है। अगर ऐसा हुआ तो ये आखिरी धोखा पहले धोखे से भी ज़्यादा बड़ा होगा। पिलातुस ने जवाब दिया, पहरेदारों को लेकर कब्र को इतना महफूज कर दो जितना तुम कर सकते हो। चुनांचे उन्होंने जाकर कब्र को महफूज कर लिया। कब्र के मुंह पर पड़े पत्थर पर मुहर लगाकर उन्होंने उस पर पहरे मुकर्रर कर दिए।